एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, इस ज्ञान गोष्ठी में आप सबका स्वागत है, जहां हम बड़े विचारों को थोड़ा करीब से देखते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं
और कोशिश करते हैं कि उन विचारों के पीछे जो मतलब छुपा है या उनका जो असर हो सकता है उसे पकड़ सकें।
हाँ बिल्कुल।
तो आज हम एक ऐसे आइडिया पर बात कर रहे हैं जो आजकल बहुत सुनाई दे रहा है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, मतलब UBI।
जी, और इसे समझने के लिए हम सहारा ले रहे हैं कार्ल विडक्विस्ट की किताबों का। वो इस विषय के मतलब जाने माने एक्सपर्ट माने जाते हैं।
हाँ, और ये विषय आज इतना जरूरी क्यों हो गया है?
देखिए, अपने चारों तरफ हम देख ही रहे हैं, आर्थिक असमानता बढ़ती जा रही है ना। ऑटोमेशन मतलब मशीनों से नौकरियों पर खतरा, और गरीबी तो खैर वो तो एक लगातार बनी हुई चुनौती है ही।
सही बात है।
तो ऐसे में UBI एक अलग तरह के हल की तरह देखा जा रहा है। इसका समाज में रोल क्या हो सकता है, क्या लक्ष्य होना चाहिए, ये सवाल बहुत अहम है।
बिल्कुल, मतलब ये सिर्फ कोई पैसे बांटने की स्कीम नहीं है,
नहीं,
ये तो हमारे समाज, हमारे काम करने के तरीके और जो बुनियादी जरूरतें हैं उनको लेकर हमारी पूरी सोच पर ही सवाल उठाता है।
सही कहा। तो चलिए कार्ल विडक्विस्ट के नजरिए से इसे थोड़ा और खोलकर समझते हैं कि UBI का असल मकसद और उसकी भूमिका क्या हो सकती है।
हाँ, पहले थोड़ा लेखक के बारे में बात कर लें, कार्ल विडक्विस्ट।
जरूर। देखिए, कार्ल विडक्विस्ट सिर्फ एक अर्थशास्त्री या सिर्फ एक दार्शनिक नहीं है, वो दोनों हैं।
अच्छा।
हाँ, अभी जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी कतल में प्रोफेसर हैं, और उनके पास ऑक्सफर्ड से पॉलिटिकल थियरी में और सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क से अर्थशास्त्र में PhD है।
तो ये जो दोहरा नजरिया है, यही शायद उनके काम को खास बनाता है।
BI को सिर्फ आंकड़ों या किताबी सिद्धांतों में नहीं देखते, वो इसे नैतिकता और असल दुनिया की जो जरूरतें हैं उस तराजू पर तौलते हैं। और कोई एक दो साल से नहीं, 20 साल से ज्यादा से इस पर रिसर्च कर रहे हैं वो।
बाप रे, 20 साल!
हाँ, और वो बेसिक इनकम अर्थ नेटवर्क मतलब BIEN उसके को फाउंडर भी रहे हैं। उनकी एक खास सोच है जिसे वो कहते हैं इंडिपेंटेरियनिज्म।
इंडिपेंटेरियनिज्म, ये क्या?
इसका सार ये है, मतलब उनका मानना है कि एक न्यायपूर्ण समाज का लक्ष्य ये होना चाहिए कि वो हर इंसान को बिना किसी शर्त के जीने लायक साधन दे, और साथ ही अपनी मर्जी से फैसले लेने की आजादी मतलब स्वायत्ता दे।
अच्छा, यानी उनके लिए UBI का गोल सिर्फ गरीबी मिटाना नहीं है?
नहीं, उससे आगे की बात है। ये हर नागरिक को वो बुनियादी आर्थिक सुरक्षा देना है जो असल आजादी के लिए जरूरी है। वो इसे कोई खैरात या दान नहीं मानते।
तो फिर क्या मानते हैं?
वो इसे हमारी सती साझी संपत्ति मानते हैं, जैसे जमीन है या दूसरे प्राकृतिक संसाधन है। उसमें हर नागरिक का हक या एक तरह का सामाजिक लाभांश,
सोशल डिविडेंड।
हाँ, और ये नजरिया UBI की भूमिका को एकदम बदल देता है ना। ये चैरिटी नहीं, अधिकार बन जाता है।
सही बात है। तो विडक्विस्ट की किताबें करती क्या है, मतलब किस तरह से समझाती हैं इस विषय को?
देखिए, उनकी किताबें UBI जैसे मान लीजिए थोड़े मुश्किल विषय को आम लोगों के लिए, पॉलिसी बनाने वालों के लिए, सबके लिए आसान बना देती हैं।
अच्छा।
उनका मकसद है कि इस आइडिया के हर पहलू को, मतलब वो है क्या, उसका इतिहास क्या रहा है, फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हो सकते हैं, क्या सबूत है हमारे पास, सब कुछ सरल भाषा में सामने रख दें।
और किताब का जो सेंट्रल आइडिया है वो क्या है?
मेन तर्क यही है कि UBI सिर्फ एक इकोनॉमिक टूल नहीं है, ये सामाजिक न्याय की, और जिसे वो वास्तविक स्वतंत्रता या रियल फ्रीडम कहते हैं, उसकी जरूरत है।
वास्तविक स्वतंत्रता मतलब
सिर्फ कागज पर आजादी नहीं। अगर आपके पास जीने के साधन ही नहीं है तो आप सच में आजाद कहाँ हैं?
सही बात तो सही है।
जब तक पेट की चिंता है तब तक कैसी आजादी। तो UBI वो आर्थिक ताकत देने की बात करता है जिससे लोग सच में अपनी जिंदगी के फैसले ले सकें।
तो किताब हमें एक तरह के सफर पर ले जाती है।
बिल्कुल। पहले वो समझाते हैं कि भाई UBI है क्या और क्या नहीं है। फिर दिखाते हैं कि ये विचार कोई आज का नहीं, इसकी जड़ें इतिहास में हैं।
अच्छा।
उसके बाद वो इसके पीछे के नैतिक और आर्थिक तर्क रखते हैं कि क्यों ये न्यायपूर्ण है और क्यों ये फायदेमंद भी हो सकता है।
और वो मुश्किल सवाल, जैसे लोग काम करना छोड़ देंगे या पैसा कहाँ से आएगा?
हाँ हाँ, उन सवालों का भी सामना करते हैं, और उसके लिए वो दुनिया भर में जो प्रयोग हुए हैं उनके सबूत भी सामने रखते हैं। और आखिर में वो UBI के भविष्य पर और समाज के लिए इसके संभावित रोल पर बात करते हैं। मतलब एक तरह से ये UBI पर एक पूरी मुकम्मल चर्चा है।
बढ़िया, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। आखिर ये यूबीआई है क्या भला? आपने कहा विटरक्विस्ट 5 खास बातें बताते हैं।
जी, पहली बात, ये नियमित है, मतलब एक तय समय पर मिलती है, जैसे हर महीने। ऐसा नहीं कि एक बार दे दिया और बस।
ठीक है, रेगुलर। दूसरी?
दूसरी, ये नकद यानी कैश में मिलती है, ताकि लोग खुद तय कर सकें कि उन्हें पैसा कहाँ खर्च करना है, उनकी जरूरत क्या है, सरकार न बताए।
ओके, अपनी जरूरत के हिसाब से। तीसरा?
तीसरा, ये व्यक्तिगत है, मतलब हर इंसान को मिलती है, पूरे परिवार को एक साथ नहीं। इससे हर व्यक्ति की अपनी पहचान और उसकी स्वतंत्रता बनी रहती है।
ये भी जरूरी है। चौथी?
चौथी, ये सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल, यानी सबको मिलती है, अमीर हो, गरीब हो, नौकरी हो या न हो, सबको, कोई भेदभाव नहीं।
सबको, अमीर को भी?
हाँ, सबको। और पांचवी बात, जो शायद सबसे अहम है और सबसे ज्यादा बहस भी इसी पर होती है,
वो क्या?
ये बिना शर्त है, अनकंडीशनल। इसे पाने के लिए आपको कोई काम करने या नौकरी ढूंढने या कोई और शर्त पूरी करने की जरूरत नहीं होती।
अच्छा, मतलब कोई शर्त नहीं?
जी नहीं। और यही बात इसे आजकल की जो सरकारी मदद योजनाएं हैं, वेलफेयर स्कीम्स हैं, उनसे बिल्कुल अलग बनाती है। उनमें तो हजार शर्तें होती है, जांच पड़ताल होती है।
हाँ, वो तो है।
ये बिना शर्त होना ही यूबीआई का जो सम्मान वाला पहलू है उसे मजबूत करता है।
तो ये परिभाषा साफ करती है कि यूबीआई सिर्फ एक और वेलफेयर स्कीम नहीं है, ये कुछ अलग है।
बिल्कुल। लेकिन ये विचार आया कहाँ से? क्या ये वाकई कोई नया आइडिया है?
नहीं नहीं, यही तो विटरक्विस्ट यही बताते हैं कि ये सोचना गलत है कि ये कोई सिलिकॉन वैली का नया फैशन है या कुछ।
अच्छा।
इसकी जड़ें तो काफी पुरानी है। 18वीं सदी में, चलिए, थॉमस पेन थे ना।
हाँ हाँ।
उन्होंने एग्रेरियन जस्टिस में लिखा था कि भाई जमीन तो सबकी साझी विरासत है, अब अगर उसका निजीकरण हो गया है तो जिनके पास जमीन नहीं बची उन्हें उसका मुआवजा मिलना चाहिए, एक तरह का ग्राउंड रेंट।
अरे वाह, ये तो बहुत पहले की बात है,
है ना। और फिर 20वीं सदी में देखिए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे महान नेता
जी,
उन्होंने इसे गरीबी और खासकर नस्लीय अन्याय से लड़ने का एक जरिया माना था। और दूसरी तरफ सोचिए, मिल्टन फ्रीडमैन जैसे एकदम राइट विंग अर्थशास्त्री।
हाँ, वो तो फ्री मार्केट के समर्थक थे।
बिल्कुल। उन्होंने भी इसके एक रूप नेगेटिव इनकम टैक्स का समर्थन किया था। उनका तर्क था कि इससे सरकारी दखल कम होगा, नौकरशाही घटेगी।
कमाल है, मतलब लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से समर्थन।
हाँ, यहाँ तक कि अमेरिका के रिपब्लिकन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने 60 के दशक के अंत में एक गारंटीड आय का प्रस्ताव रखा था संसद में, पास नहीं हुआ, वो अलग बात है।
अच्छा, ये तो मुझे पता नहीं था।
तो कहने का मतलब यह है कि ये कोई सिर्फ एक विचारधारा का आइडिया नहीं है, इसे अलग अलग नजरियों से एक समाधान के तौर पर देखा गया है। और आज ऑटोमेशन और बढ़ती असमानता के इस दौर में इसमें फिर से दुनिया की दिलचस्पी बढ़ी है।
इतिहास तो वाकई बड़ा दिलचस्प है इसका, लेकिन विटरक्विस्ट के तर्क का जो दिल है वो तो सामाजिक न्याय वाले हिस्से में है ना।
हाँ बिल्कुल, यही उनका वो इंडिपेंडेरियनिज्म वाला दर्शन सामने आता है। वो साफ कहते हैं, यूबीआई कोई दान या खैरात नहीं है, ये न्याय की मांग है।
न्याय की मांग, कैसे?
उनका तर्क बड़ा सीधा है। वो कहते हैं, सच्ची आजादी सिर्फ कानूनों में लिख देने से नहीं आती। अगर आपको जीने के लिए, अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, तो आप असल में आजाद कैसे हुए?
बात तो सोचने वाली है।
यूबीआई वो न्यूनतम आर्थिक आधार देता है जिसे इंसान अपनी मर्जी से जी सके, अपने फैसले ले सके। विटरक्विस्ट की एक बात मुझे याद आती है, वो कहते हैं, सच्ची स्वतंत्रता के लिए सिर्फ कानूनी बाधाओं का न होना काफी नहीं, बल्कि सार्थक चुनाव करने के लिए भौतिक साधनों का होना भी जरूरी है।
वाह, मतलब आर्थिक सुरक्षा ही असली आजादी की नींव है।
ये यूबीआई के लक्ष्य को सीधे स्वतंत्रता से जोड़ता है।
बिल्कुल।
और वो संपत्ति के अधिकार पर भी गहरा सवाल उठाते हैं।
वो कैसे?
वो कहते हैं कि ये धरती, इसके संसाधन, ये सब मूल रूप से तो सबके थे ना।
हाँ, थे तो।
निजीकरण हुआ, उससे उत्पादन बढ़ा, वो ठीक है, पर इसका नतीजा ये भी हुआ कि बहुत सारे लोग अपनी उस साझी विरासत के हिस्से से वंचित हो गए। तो यूबीआई उसी सामूहिक विरासत का एक तरह का सामाजिक लाभांश है जो सबको मिलना चाहिए, उनका हक है वो।
ये नजरिया तो बिल्कुल अलग है, मतलब यूबीआई को अधिकार की तरह देखना।
हाँ, और इसका सबसे बड़ा असर क्या होता है? लोगों को मिलती है ना कहने की ताकत, पावर टू से नो।
ना कहने की ताकत
मतलब
ये कि सोचिए, अगर आपको ये पता हो कि कल खाने को मिलेगा, आप भूखे नहीं मरेंगे, तो क्या आप कोई भी शोषण भरी नौकरी, कम पैसे वाली नौकरी करने को मजबूर होंगे?
शायद नहीं।
या किसी बुरे रिश्ते में अपमानजनक हालात में फंसे रहेंगे, शायद नहीं। ये जो ना कहने की ताकत है ना, यही यूबीआई की असली भूमिका है विजर क्विस्ट के अनुसार, लोगों को सशक्त करना, उन्हें विकल्प देना।
ये तो बहुत मजबूत नैतिक तर्क है, न्याय और आजादी। इसके बाद विजर क्विस्ट आर्थिक पहलू पर भी आते हैं, मतलब क्या ये प्रैक्टिकल है?
हाँ बिल्कुल, वो तर्क देते हैं कि यूबीआई मौजूदा कल्याणकारी योजनाओं से ज्यादा कारगर, ज्यादा कुशल या इफिशिएंट भी हो सकता है।
वो कैसे?
आजकल की योजनाएं तो बहुत फैली हुई हैं।
इसीलिए तो आज की ज्यादातर योजनाएं बहुत जटिल है, कौन हकदार है कौन नहीं ये तय करने में ही इतना पैसा, इतना समय, इतनी नौकरशाही लगती है।
हाँ, फॉर्म भरो, चक्कर काटो।
बिल्कुल, और कई बार तो लोगों को अपमान भी झेलना पड़ता है ना?
जी, और फिर वो गरीबी का जाल वाली बात भी है, पॉवर्टी ट्रैप।
हाँ, ये बहुत अहम पॉइंट है। मतलब अगर कोई गरीब आदमी थोड़ी कम कमाई वाली नौकरी करता है तो उसकी सरकारी मदद इतनी ज्यादा कट जाती है कि उसे लगता है यार मेहनत करके फायदा ही क्या हुआ।
सही बात है, ये तो काम करने से हतोत्साहित करने जैसा हुआ।
बिल्कुल, अब यूबीआई इन सबसे उलट है, एकदम सरल, सबको दो, कोई जांच पड़ताल नहीं है,
तो प्रशासनिक लागत बहुत कम हो गई।
हाँ, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई स्टिग्मा नहीं, और क्योंकि ये बेसिक इनकम काम करने पर छीनी नहीं जाती, इसलिए मेहनत करने का, ज्यादा कमाने का हौसला हमेशा बना रहता है।
अच्छा, मतलब काम करना हमेशा फायदेमंद रहेगा।
एग्जैक्टली, तो विड रिक्वेस्ट का तर्क है कि यूबीआई न सिर्फ न्यायपूर्ण है बल्कि आर्थिक रूप से भी ज्यादा समझदारी भरा कदम हो सकता है, और ये इकोनॉमी में डिमांड को भी स्थिर रखने में मदद कर सकता है।
ठीक है, ये फायदे तो समझ आते हैं, लेकिन वो बड़े सवाल जो हमेशा यूबीआई पर उठते हैं, उनका क्या? सबसे पहला डर, अगर मुफ्त पैसा मिलेगा तो लोग काम क्यों करेंगे, सवाल सी नहीं हो जाएंगे?
हाँ, ये डर तो सबसे आम है। विड रिक्वेस्ट इसे कई तरह से एड्रेस करते हैं। पहली बात, वो कहते हैं कि यूबीआई सिर्फ गुजारे लायक होगी, कोई लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए नहीं। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, ज्यादा कमाने के लिए काम करना चाहेंगे ही, इंसान की फितरत है ये।
सही है।
दूसरी बात, वो एक नैतिक सवाल भी उठाते हैं, क्या समाज का ये लक्ष्य होना चाहिए कि वो लोगों को गरीबी का डर दिखाकर मजबूरी में कम वेतन वाली गंदी या खतरनाक नौकरियां करने पर मजबूर करे?
ये तो सोचने वाली बात है, क्या लोगों को बेहतर काम चुनने की आजादी नहीं मिलनी चाहिए?
बिल्कुल, और फिर आता है सबसे मजबूत जवाब, असली दुनिया के सबूत, एम्पिरिकल एविडेंस।
हाँ, वो पायलट प्रोजेक्ट्स वाली बात।
जी, जहां भी यूबीआई जैसे पायलट प्रोजेक्ट हुए हैं, चाहे वो अमीर देशों में हो या गरीब देशों में, ये डर गलत साबित हुआ है।
अच्छा,
लोगों ने काम करना बंद नहीं किया?
बड़े पैमाने पर तो बिल्कुल नहीं।
आंकड़े दिखाते हैं कि काम के घंटों में अगर कोई कमी आई भी तो वो बहुत मामूली थी।
और वो कमी क्यों आई?
ज्यादातर उन लोगों में जिन्होंने उस समय का इस्तेमाल बच्चों की देखभाल करने या अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करने या कोई नया हुनर सीखने में किया, मतलब समाज के लिए जरूरी कामों में।
अच्छा,
जो घर के मुख्य कमाने वाले थे उन पर तो लगभग कोई असर नहीं हुआ। असल में लोगों को काम छोड़ने की बजाय बेहतर काम ढूंढने या अपना कुछ छोटा मोटा शुरू करने का हौसला मिला।
तो ये आलसी बनाने वाली बात तो सबूतों पर खरी नहीं उतरती।
नहीं, बल्कि लगता है लोग ज्यादा जिम्मेदार और उद्यमी बनते हैं।
ठीक है, अब दूसरा बड़ा सवाल, पैसा। इतना पैसा कहाँ से आएगा, ये तो बहुत महंगा सौदा लगता है।
हाँ, ये खर्चा वाला सवाल तो हमेशा आता है। आलोचक अक्सर क्या करते हैं, यूबीआई की रकम को पूरी आबादी से गुणा करके एक बहुत बड़ा आंकड़ा दिखा देते हैं और कहते हैं लो ये तो असंभव है। विड रिक्वेस्ट कहते हैं कि ये सकल लागत है, ग्रॉस कॉस्ट। हमें शुद्ध लागत, नेट कॉस्ट देखनी चाहिए, जो इससे काफी कम होती है।
शुद्ध लागत, वो कैसे कम होती है?
देखिए, जब यूबीआई आएगा तो कई मौजूदा खर्चे बचेंगे, जैसे कुछ पुरानी कम असरदार वेलफेयर योजनाओं को बंद या कम किया जा सकता है।
अच्छा,
फिर गरीबी से जुड़ी कई समस्याएं हैं, जैसे अपराध, स्वास्थ्य समस्याएं, उन पर होने वाला सरकारी खर्च कम होगा। और ये भी मत भूलिए कि यूबीआई पाने वाले बहुत से लोग टैक्स स्लैब में भी आएंगे, तो कुछ पैसा टैक्स के रूप में वापस भी आएगा।
हाँ, ये बात भी है, पर फिर भी फंडिंग के लिए कुछ नए तरीके तो चाहिए होंगे ना?
बिल्कुल, और विड रिक्वेस्ट कई रास्ते सुझाते हैं, जैसे बेकार की सब्सिडी खत्म करना। सोचिए, जीवाश्म ईंधन पर कितनी सब्सिडी दी जाती है।
हाँ, वो तो है। टैक्स सिस्टम को सुधारना, टैक्स चोरी रोकना, कार्बन टैक्स लगाना, जो प्रदूषण करे वो भरे, या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पर बहुत छोटा सा टैक्स, या फिर जो बहुत ज्यादा दौलत है उस पर मामूली सा वेल्थ टैक्स,
और वो साझी संपत्ति वाली बात।
हाँ, वो भी एक तरीका है, उन साझी चीजों पर टैक्स लगाना जिन पर सबका हक है, जैसे जमीन के बढ़ते दामों पर, लैंड वैल्यू टैक्स, या प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल पर, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से होने वाली कमाई पर।
तो मतलब रास्ते हैं?
रास्ते कई हैं। विल्ड्रिक्विस्ट का कहना है कि मुद्दा पैसे की कमी का उतना नहीं है जितना राजनीतिक इच्छा शक्ति और सामाजिक प्राथमिकताओं का है। सवाल यह है कि क्या हम एक देश के तौर पर अपनी कुल दौलत का एक छोटा सा हिस्सा हर नागरिक की बुनियादी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करने को तैयार हैं? यूबीआई का असली सवाल यही है।
ये तो वाकई प्राथमिकता तय करने की बात है। अच्छा, उन प्रयोगों पर थोड़ी और बात करें जिनका जिक्र हुआ था, सबूत क्या कहते हैं?
हाँ जरूर, जैसे कनाडा में 70 के दशक में एक बड़ा प्रयोग हुआ था, मिनकॉम।
हाँ, सुना उसके बारे में।
उसके नतीजे दिखाते हैं कि गारंटीड आय मिलने से लोगों का स्वास्थ्य सुधरा, बच्चे स्कूल में ज्यादा टिके, अस्पताल में भर्ती होने की दर कम हुई और काम पर असर बहुत मामूली था।
और हाल के प्रयोग?
हाल में फिनलैंड में एक प्रयोग हुआ 2017-18 में, वहाँ बेरोजगारों को बेसिक इनकम दी गई।
उसका क्या नतीजा निकला?
नतीजा ये निकला कि भले ही इससे सीधे नौकरी पाने वालों की संख्या बहुत नहीं बढ़ी, लेकिन लोगों का मानसिक स्वास्थ्य बहुत बेहतर हुआ, तनाव कम हुआ, आत्मविश्वास बढ़ा और वो ज्यादा खुश महसूस करने लगे।
ये भी तो बहुत जरूरी है।
बिल्कुल। फिर एक विकासशील देश का उदाहरण देखिए, केन्या में गिव डायरेक्टली नाम की संस्था सीधे लोगों के खाते में पैसा भेज रही है।
अच्छा,
वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ के नतीजे तो और भी दिलचस्प है। लोग उस पैसे से छोटे मोटे व्यापार शुरू कर रहे हैं, अपनी खेती सुधार रहे हैं, बच्चों की स्कूल फीस भर रहे हैं, पोषण का स्तर सुधरा है, मानसिक स्वास्थ्य बेहतर हुआ है।
मतलब लोग पैसा बर्बाद नहीं कर रहे हैं?
नहीं, बिल्कुल नहीं, वो उसे अपनी बेहतरी में लगा रहे हैं। ऐसा ही अमेरिका के स्टॉकटन शहर में सीड नाम के प्रयोग में भी देखा। लोगों ने पैसा मुख्य रूप से अपनी बुनियादी जरूरतों, खाना, कपड़ा, मकान, बिल, इन पर खर्च किया।
तो ये सारे सबूत मिलकर एक ही कहानी कह रहे हैं?
हाँ, कहानी यही है कि यूबीआई को लेकर जो बड़े बड़े डर फैलाए जाते हैं कि लोग आलसी हो जाएंगे, समाज बिखर जाएगा, पैसा बर्बाद होगा, वो डर जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाते। सबूत कुछ और ही इशारा कर रहे हैं।
तो कुल मिलाकर विड्रॉक्विस्ट का निष्कर्ष क्या निकलता है सबसे?
देखिए, वो यूबीआई को न्याय, स्वतंत्रता और कुशलता के तर्कों से बहुत मजबूती से स्थापित करते हैं। वो दिखाते हैं कि ये सिर्फ एक पॉलिसी का आइडिया नहीं है, बल्कि ये समाज को, इंसान को देखने का एक अलग नजरिया है।
और उनका मानना है कि ये एक ऐसा विचार है जिसका समय शायद अब आ गया है।
हाँ, खासकर आज की चुनौतियों को देखते हुए, ऑटोमेशन है, क्लाइमेट चेंज है, असमानता लगातार बढ़ रही है, ऐसे में जो हमारी पुरानी सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्थाएं हैं वो शायद अब काफी नहीं है। तो यूबीआई 21वीं सदी के लिए एक ज्यादा न्यायपूर्ण, ज्यादा आजाद और ज्यादा सुरक्षित समाज बनाने का एक ताकतवर और जरूरत के हिसाब से ढलने वाला एडेप्टेबल जरिया हो सकता है।
बात सही।
इसका रोल भविष्य को संवारने में बहुत अहम हो सकता है।
तो इस पूरी चर्चा से कुछ खास विषय या संदेश क्या निकलते हैं जिन्हें हम याद रख सकते हैं?
पहला तो मेरे ख्याल से वही वास्तविक स्वतंत्रता वाला विचार है।
हाँ।
कि सिर्फ कहने की आजादी काफी नहीं होती, जीने और चुनने की आर्थिक ताकत भी होनी चाहिए।
भारत में हम रोज देखते हैं कि कैसे पैसे की कमी लोगों के सपनों को, उनकी संभावनाओं को सीमित कर देती है। यूबीआई उस सीमा को तोड़ने का एक वादा करता है।
ये बात सही है। दूसरा, बिना शर्त मदद का सम्मान, ये बहुत जरूरी है। जो आजकल की सरकारी योजनाओं में अक्सर शर्तें होती हैं, जांच पड़ताल होती है, उसमें कहीं ना कहीं इंसान के सम्मान को ठेस पहुंचती है।
हाँ, वो एक एहसान जैसा लगता है।
बिल्कुल। यूबीआई हर नागरिक को बराबर का हकदार मानता है, दया का पात्र नहीं। ये गरिमा का सवाल है। विड्रॉक्विस्ट की एक बात बहुत अच्छी है, वो कहते हैं कि यूबीआई हर नागरिक को बुनियादी सुरक्षा का समान हकदार मानता है, जिससे पारंपरिक कल्याण प्रणालियों से जुड़े नैतिक फैसले और कलंक खत्म हो जाते हैं।
ये बहुत गहरा पॉइंट है। तीसरा,
सरलता में कुशलता। यूबीआई का ढांचा कितना सरल है, सबको देना है बस, इससे प्रशासनिक झंझट कम, बर्बादी कम। भारत में सोचिए, जहां सरकारी योजनाओं का लाभ लेना ही अपने आप में एक बड़ा काम है।
हाँ, वो तो है।
वहां यूबीआई की ये सरलता बहुत आकर्षक लगती है।
चौथा पॉइंट क्या होगा?
चौथा, तकनीक का भविष्य और इंसानियत। ऑटोमेशन आ रहा है, एआई आ रहा है, इससे जो फायदा होगा वो किसके पास जाएगा? क्या मशीनें इंसानों की जगह ले लेंगी या उनकी मददगार बनेंगी?
हाँ, ये बड़ा सवाल है।
यूबीआई ये सुनिश्चित करने का एक तरीका हो सकता है कि तकनीकी तरक्की का लाभ सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित न रहे बल्कि सब तक पहुंचे। विड रिक्वेस्ट इसे तकनीकी बदलावों के प्रबंधन के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा कहते हैं। ऐसा ढांचा जो ये पक्का करे कि ऑटोमेशन मानवता की सेवा करे न कि उसे विस्थापित करे।
ये भविष्य के लिए बहुत जरूरी सोच है। और पांचवा
जो शायद भारत जैसे देश के लिए बहुत जरूरी है, लैंगिक समानता और देखभाल का काम।
वो कैसे?
देखिए, हमारे घरों में कितना सारा काम महिलाएं करती हैं जिसका कोई पैसा नहीं मिलता। बच्चों की देखभाल, बूढ़ों की देखभाल, घर संभालना, है ना?
हाँ, बिल्कुल।
अवैतनिक काम, UBI उस काम को एक तरह की आर्थिक मान्यता दे सकता है। जब हर महिला के हाथ में अपनी एक बेसिक इनकम होगी तो उसे आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी, घर के फैसलों में उसकी आवाज मजबूत होगी, मोल भाव करने की ताकत बढ़ेगी।
ये तो बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। तो इन सारे विचारों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ सकता है, मतलब हम इनसे क्या सीख सकते हैं अपने लिए?
सबसे पहली बात तो ये है कि ये हमें आर्थिक सुरक्षा के महत्व को समझने में मदद करता है। जब थोड़ी निश्चितता होती है ना कि चलो गुजारे लायक तो आ ही जाएगा, तो हम थोड़े बड़े और बेहतर फैसले ले पाते हैं।
जैसे
शायद कोई बेहतर नौकरी ढूंढने के लिए थोड़ा इंतजार कर सकें, या कोई नया कोर्स कर सकें, या अपना कोई छोटा मोटा काम शुरू करने का सोच सकें, या बस थोड़ा कम तनाव में जी सकें।
हाँ, वो भी है। और काम की जगह पर
ये कर्मचारियों की मोल भाव करने की शक्ति बढ़ा सकता है। अगर नौकरी जाने का डर सिल पर हर वक्त न मंडरा रहा हो तो लोग शायद बेहतर वेतन के लिए या काम करने की बेहतर शर्तों के लिए आवाज उठा सकें।
और सामाजिक तौर पर
सोचिए, अगर लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी हों तो वो शायद समुदाय के कामों में या कला में या स्वयं सेवा में ज्यादा समय और ऊर्जा दे पाए।
हाँ, मतलब वो काम जिनका पैसा नहीं मिलता पर जो समाज के लिए जरूरी हैं।
बिल्कुल, समाज सिर्फ पैसों वाले काम से नहीं चलता ना, बहुत सारा अवैतनिक योगदान होता है, UBI उसे संभव बनाता है। विड रिक्वेस्ट की एक और बात याद आती है, आर्थिक सुरक्षा कोई विलासिता नहीं है, यह वो नींव है जो लोकतांत्रिक भागीदारी, उद्यमिता और मानव विकास को संभव बनाती है।
वाह, नागरिक के तौर पर यह हमें भारत में सामाजिक सुरक्षा पर नए सिरे से सोचने को भी प्रेरित करता है ना?
बिल्कुल, क्या हमारी मौजूदा नीतियां वाकई गरीबी और असमानता को खत्म कर पा रही हैं? क्या UBI जैसा कोई नया तरीका ज्यादा कारगर हो सकता है? ये सवाल पूछना, इन पर बहस करना बहुत जरूरी है।
तो आखिर में इस पूरी चर्चा से हमारे लिए सबसे बड़ा सबक या टेक अवे क्या है?
मेरे लिए जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि UBI सिर्फ एक आर्थिक पॉलिसी का नंबर नहीं है, ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है, एक पैराडाइम शिफ्ट है।
कैसे?
ये इस सोच को चुनौती देता है कि इंसान की कीमत सिर्फ उसके काम से है। ये मानता है कि आर्थिक सुरक्षा डर का कारण नहीं बल्कि आजादी और तरक्की का आधार है। ये सवाल करता है कि क्या हर इंसान का बुनियादी जरूरतों पर हक नहीं होना चाहिए सिर्फ इसलिए कि वो इंसान है। मेरे ख्याल से ये UBI का मूल लक्ष्य है, उसकी आत्मा है।
और मेरे लिए जो सबसे चौंकाने वाली बात रही वो ये कि सबूत क्या दिखाते हैं। हम सब मन में एक डर लेके चलते हैं कि मुफ्त पैसा मिला तो लोग काम करना बंद कर देंगे, पर दुनिया भर के प्रयोग ठीक इसका उल्टा दिखा रहे हैं।
हाँ,
लोग ज्यादा जिम्मेदार बन रहे हैं, उनका स्वास्थ्य सुधर रहा है, वो नया कुछ करने की सोच रहे हैं। ये दिखाता है कि UBI सिर्फ कोई हवाई सपना नहीं बल्कि एक परखावा गंभीर विचार है जिसकी भूमिका भविष्य में बहुत अहम हो सकती है।
बिल्कुल। और शायद सोचने के लिए एक आखिरी सवाल हम श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं।
हाँ, बताइए।
अगर मान लीजिए भविष्य में तकनीक इतनी उन्नत हो जाती है कि सबकी बुनियादी जरूरतें पूरी करना बहुत आसान हो जाएं, तो एक समाज के तौर पर हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? सिर्फ और ज्यादा उत्पादन करते जाना या ये सुनिश्चित करना कि उस समृद्धि का इस्तेमाल हर कोई एक ज्यादा स्वतंत्र, ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा सार्थक जीवन जीने के लिए कर सकें? UBI हमें इसी बुनियादी सवाल से रूबरू कराता है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।